हिंदी दशा और दिशा। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। कांग्रेस के एक अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में जगह जगह पर राष्ट्रभाषा प्रचार समितियों का गठन किया गया है, जिनमें केवल हिंदी के प्रचार के लिए प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ जैसी परीक्षाओं का आयोजन माध्यम बनाकर लोगों को, खासकर अहिंदी भाषियों को, हिंदी में काबिल बनाने का यत्न किया। लेकिन ये समितियां भारत की अन्य भाषाओं की ओर अन्य मनस्क एवं सुप्त थीं। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। वहाँ राष्ट्रभाषा व अष्टम अनुच्छेद की भाषाएं ही नजर आती हैं। संविधान की राजभाषा समिति में अंततः हिंदी व तमिल के बीच चुनाव हुआ, जिनमें समान मत मिलने की वजह से अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षीय मत यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग करना पड़ा। फलस्वरूप हिंदी राष्ट्रभाषा बनी। शायद इसी द्वंद के कारण तमिल भाषी आज भी हिंदी को अपना नहीं सके हैं। कई लोगों ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया और दक्षिण भारतीयों को हिंदी से तोड़कर रखने में काफी मेहनत भी की। आज ये प्रक्रिया सशक्त राजनीति का हिस्सा बन गई है। सन 1963 में हिंदी राजभाषा अधिनियम जारी हुआ, लेकिन ताज्जुब इस बात का होता है कि 1973 में जब मैंने हिंदी भाषी राज्य से हिंदी साहित्य विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की, तब भी शालाओं में राजभाषा के बारे में कोई पढ़ाई या चर्चा नहीं होती थी। सन 1983-84 के दौरान जब एक सरकारी दफ्तर में जाने का अवसर मिला, तब वहाँ के प्रशिक्षण केंद्र में देखा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं अपितु हमारे संघ की राजभाषा भी है। वहाँ का कोई कर्मचारी मुझे इसका अर्थ नहीं समझा पाया। बाद बाद में किताबों से जानकारी मिली कि राजभाषा क्या है और ये राष्ट्रभाषा से किस तरह भिन्न है। क्या हम अपनी राजभाषा को पर्दे में संजोकर रखना चाहते हैं? यदि हिंदी का प्रयोग बढ़ाना है और हिंदी को सही मायने में अपनाना है तो इसे खुली छूट देनी होगी। हिंदी के सारे नियम कानून जग जाहिर करने होंगे। सारे उच्च स्तरीय अधिकारियों को, जन समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूरन ही सही अपने बच्चों को हिंदी माध्यम स्कूलों में पढ़ाना होगा। अधिकारी इससे कतराते क्यों हैं? इसका राज ही है, या उनकी समझ में भी अंग्रेजी ही शिखर की सीढ़ी है? 50-55 साल के किसी बूढ़े को एक सप्ताह का प्रशिक्षण दे देने से वो हिंदी में पंडित नहीं हो जाता। इसके लिए आवश्यक है कि वो व्यक्ति इस भाषा से लगातार संपर्क में रहे। ये संभव तभी हो सकता है जब भारत की सभी शालाओं में हिंदी अनिवार्य हो और इसमें 50% अंक पाने पर ही उसे उत्तीर्ण घोषित किया जाए। लेकिन इस तरह के निर्णय ले कौन? हमारे देश में मुद्दे तो इसी तरह के हैं। जातियों, धर्मों व भाषाओं को भी नहीं बख्शा गया। कहीं अहिंदी का मुद्दा है तो कहीं हिंदी का, लेकिन सभी का मकसद है जोड़ तोड़। इन सबके रहते देश हिंदी में प्रगति करे तो करे भी कैसे? सुना है भारत के एक राज्य में हिंदी राष्ट्रीय समाचार प्रसारित नहीं होते थे। टीवी पर भी राष्ट्रीय समाचार ब्रॉडकास्ट नहीं होते थे, पर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति या किसी ने इस ओर झांकना भी उचित नहीं समझा। शायद वे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कम व अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग थे। क्या हमारा हिंदी प्रचार का कार्यक्रम ऐसा ही है? यदि हम हिंदी की इतनी ही सेवा करना चाहते हैं, हिंदी के प्रति हमारा रुख बर्ताव ऐसा ही होना था, तो जो नतीजे सामने आ रहे हैं उनसे दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। नतीजे ऐसे ही आने थे सो आए। नतीजे प्रयत्न के फलस्वरूप ही हैं। यदि सही मायने में हम हिंदी के उपासक हैं और हिंदी को पनपता देखना चाहते हैं, तो सभी सार्वजनिक व सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रवेश के लिए हिंदी अनिवार्य क्यों नहीं की जाती? ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि हिंदी जानने वाला अंग्रेजी नहीं जान सकता। यदि किसी को ऐसा लगता है कि प्रगति के लिए अंग्रेजी जरूरी है, तो वो अंग्रेजी सीखे, और क्योंकि देश में पढ़ने के लिए हिंदी जरूरी है इसलिए हिंदी पढ़े। सवाल केवल इसी बात का है कि सरकार में ऐसे कदम उठाने की हिम्मत हो। स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के बाद भी हमें अपनी भाषा के बारे में सोचना पड़ रहा है। क्या यह दयनीय नहीं है? शर्मनाक नहीं है? पर क्या हम शर्मिंदा हो रहे हैं या हम बेशर्म हो गए हैं? इनका जवाब ढूंढिए। कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमियां आंखें फाड़कर हमारी तरफ ताकती मिलेंगी। जब हम उन गलतियों को सुधार कर खुद सुधरेंगे, तब कहीं देश या देश की भाषा को सुधारने की काबिलियत हम में आएगी। क्या हम इस सुधार के लिए तैयार हैं? सरकारी संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, कार्यालय इत्यादि में अपने विभिन्न दावे, चाहे पैसों के ही क्यों ना हो, आवेदन चाहे छुट्टी का हो या अनुदान का या फिर किसी सुविधा संबंधी अर्जी ही क्यों ना हो, हिंदी में देने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? शायद इसलिए कि कहने वाला बदनाम हो जाएगा और बेबात ही ऐसी बदनामी कौन मोलना चाहेगा। शायद कुछ सोच विचार, चर्चा परिचर्चा के बाद कम से कम हिंदी क्षेत्र में हिंदी में भरे फॉर्मों को प्राथमिकता दी जा सकती है। उसी तरह हिंदी की रचनाओं को प्रोत्साहन हेतु हिंदी के लेख, निबंध, कविता, चुटकुले, शायरी इत्यादि रचनाओं के लिए कुछ ज्यादा पारिश्रमिक दिया जा सकता है। कम से कम राष्ट्रीय पर्वों 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर पर व्याख्यान हिंदी में देने के लिए जरूर कहा जा सकता है। वैसे हिंदी दिवस, सप्ताह और पखवाड़े पर भी इसे अनिवार्य किया जा सकता है। इसका मतलब ये कदापि नहीं कि हम अंग्रेजी की अवहेलना कर हिंदी को आगे बढ़ाएं। जहां अंग्रेजी हिंदी का स्थान नहीं ले सकती, वहां निश्चित रूप से हिंदी भी अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकती। हिंदी की प्रगति के लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि हिंदी के नाम पर क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग ना हो। 1963 का राजभाषा अधिनियम भी रोजमर्रा की बोलचाल व संप्रेषण की संपर्क हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा देता है। भाषा में जितना प्रवाह होगा वो लोगों की जुबान पर उतना जल्दी चढ़ेगी भी, रोजमर्रा के जितनी करीब होगी लोगों का उसकी ओर आकर्षण उतना ही ज्यादा होगा और उतनी ही जल्दी अपनाई जाएगी। हाल ही में जी टीवी ने हिंग्लिश शुरू की, जो हिंदी और अंग्रेजी के सम्मिश्रण के अलावा कुछ नहीं है, पर इसके लिए पूरी तरह न हिंदी जानने की जरूरत थी और न ही अंग्रेजी जानने की, इसलिए आधे अधूरे भाषाई जानकारों को अच्छा मौका मिला और हिंग्लिश देखते ही देखते युवाओं के लिए वरदान साबित हुई और जवान पीढ़ी ने इसे देखते ही देखते अपना लिया। आज इंग्लिश युवा पीढ़ी की भाषा है। आज की युवा पीढ़ी किसी एक से बंधकर नहीं रह सकती, चाहे वो भाषा ही क्यों ना हो। हर क्षेत्र की तरह वो भाषा के क्षेत्र में भी लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी चाहती है, जिसकी कसौटी पर इंग्लिश खरी उतरती है। उनके लिए शायद 5 मिनट एक भाषा में बोलना दूभर हो जाए। हिंदी व अंग्रेजी कब कहाँ कैसे मिल जाए इसका उन्हें शायद आभास भी ना हो पाए। मैं यदि अपनी कहूँ तो मुझे हिंदी से बेहद लगाव है, लेकिन जिस तरह से हमारे देश में हिंदी के प्रयोग पर या अपनाने पर जोर जबरदस्ती की जाती है, उस पर मुझे कड़ी आपत्ति है। कहा जाता है कि हस्ताक्षर हिंदी में करें, कोई इन्हें समझाए कि क्या हस्ताक्षर की कोई भाषा होती है? यदि हाँ तो कल कोई मुझसे कहेगा आप हिंदी में क्यों नहीं हंस रहे हैं, या कोई कहे आप तबला हिंदी में बजाया करें, ड्राइंग हिंदी में बनाया करें, इत्यादि इत्यादि। मुझे ये पागलपन के अलावा कुछ नहीं लगता। हमारे यहाँ सरकार बच्चों को हिंदी पढ़ाने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि बूढ़ों को सप्ताह भर में हिंदी में पारंगत कर देना चाहती है। क्या पता, शायद इसलिए कि यही बच्चे कल के नागरिक होंगे और यदि वे हिंदी में पारंगत हो गए तो हिंदी पर अब से ज्यादा जोर व ध्यान होगा। हिंदी की हालत सुधर जाएगी तो भाषा की राजनीति कैसे चलेगी? अनाप शनाप आवश्यक व बेमतलब के ये तौर तरीके हिंदी के प्रचार प्रसार में सहयोगी नहीं बाधक हो रहे हैं। कोई इनकी तरफ ध्यान दे व लोगों का सही मार्गदर्शन करे तो भी बात सुधर सकती है। लोगों से जबरदस्ती मत कीजिए। ये मानव स्वभाव है कि यदि आप जबरदस्ती करेंगे तो वो आपके विरुद्ध करने को उत्सुक होगा। आपका जितना जोर होगा उसकी उतनी ही तगड़ी प्रतिक्रिया होगी। साधारण उदाहरण ही लीजिए, कोई पिक्चर ए सर्टिफिकेट पा गई हो तो बड़े देखें ना देखें पर बच्चे इसे जरूर देखेंगे कि इसमें ऐसा है क्या। आतुरता और उत्सुकता उन्हें वहां खींच लाती है। ऐसा भी नहीं है कि दक्षिण भारतीय हिंदी समझते नहीं है। यदि ऐसा होता तो हिंदी फिल्में दक्षिण भारत में नहीं चल पाती, लेकिन माजरा यहाँ उल्टा ही है। दक्षिण भारत में हिंदी फिल्मों का क्रेज है। ये भी नहीं कि दक्षिण भारत में फिल्में नहीं बनती, शायद हिंदी से ज्यादा फिल्में दक्षिण भारत में ही बनती हैं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि इसका मतलब ये कदापि नहीं कि हम अंग्रेजी की अवहेलना कर हिंदी को आगे बढ़ाएं। जहां अंग्रेजी हिंदी का स्थान नहीं ले सकती, वहां निश्चित रूप से हिंदी भी अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकती। हम आए दिन हिंदी को तहे दिल से रोजमर्रा में अपनाने का प्रण लेते रहते हैं, लेकिन इन्हें राजभाषा पखवाड़े तक ही सीमित रखना हमारी आदत बन गई है। राजभाषा तक सीमित हिंदी को अब असीमित करना होगा।